हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ सोच छलक, कुछ सोच। इस तरह से तो इस पप्पू की ईगो हवा नहीं दे सकती है। क्या करूँ क्या करूँ, कुछ तो सोच छलक, कुछ तो सोच। तू इस तरह से उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। अब जल्दी से अपनी आँखों में आंसू लाकर कहा, क्योंकि उसे उसकी माँ ने एक बार अच्छी तरह से समझा दिया था कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू होते हैं, और उससे वो चीज़ें कर सकती है जो उसकी ताकत या हिम्मत नहीं कर सकती। इसीलिए झलक ने हार नहीं मानी। इसीलिए फटाफट से नौटंकी अपनी जारी रखते हुए बोली, लेकिन मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, मैं यहाँ आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। और क्या कहा था आपने, आप मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहते हैं ना? आइए चलो अपना वो वाला कार्यक्रम शुरू कर लो। मैं तो वैसे भी अब आपकी गुलाम हो चुकी हूँ। आपको जो दिल करे आप मेरे साथ कीजिए। ये बोलकर झलक अब थोड़ा सा अपने कपड़े इधर उधर करने लगी थी। ये देखकर तो सिद्धार्थ पूरी तरह से आग बबूला हो उठा। आगे बढ़कर तुरंत उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है? या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने ये ट्रिक ज़रूर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए करी है, लेकिन मेरा नाम भी सिद्धार्थ खुराना है, और अब मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सिद्धार्थ खुराना अब कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। ये सुनकर झलक अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को उकसाया था ताकि सिद्धार्थ इसी तरह से अपने घमंड में डिसीजन ले, क्योंकि अब वो खुद सिद्धार्थ के करीब नहीं आना चाहती थी। फिर जल्दी से झलक बोली थी, आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर खुराना? आप मेरे पति हैं, शादी हुई, भले ही ज़बरदस्ती की सही, लेकिन शादी तो हो गई है ना? अब आप इस तरह से मुझे ठुकरा नहीं सकते। और वैसे भी कितनी बार तो हम लोग फर्स्ट नाइट मना चुके हैं, और अगर आज तो हमारी एक्चुअल फर्स्ट नाइट है, तो आप इस तरह से मनाने से मना कैसे कर सकते हैं? ये बोलकर एक बार फिर झलक ने अपनी आँखों का एक और आंसू टपका दिया था। ये सब देखना सिद्धार्थ के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था। भले ही झलक का व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा करता था और उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन अब जब वो झलक जैसी लड़कियों की बातें सोच रहा था तो ये सब कुछ उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसे अजीब सा महसूस हुआ और झलक को घूरते हुए बोला था, तुम सिद्धार्थ खुराना को पालो, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो दन दनाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद झलक ने गहरी सांस ली और झूमते हुए बोली, ओ गॉड, क्या सच में इस पप्पू खुराना को लगता है कि मैं इसके साथ सोने के लिए मर रही हूँ? ओ गॉड, पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ से सीधे तरीके से चली जाऊंगी, लेकिन अब नहीं, अब आकांक्षा को मुझे हिसाब देना होगा। पहले मुझे लगा था कि मुझे इस तरह से इतना अमीर परिवार के लोगों के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आकांक्षा को इस तरह की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मेरे जाने के बाद वो सुकून से सिद्धार्थ खुराना से शादी कर सकती थी और आराम से खुराना परिवार की बहू बनकर ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने इतनी बड़ी घटिया चाल चलकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और अब उसे उसका हिसाब देना होगा। और मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, तुमने पहले ही गुस्से में नफ़रत से मुझसे शादी की है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें फ़ोर्स भी नहीं करूँगी कि तुम इस शादी में बंधे रहो। बस एक बार मुझे खुराना परिवार का नाम यूज़ करने का मौका दे दो, और साथ ही साथ आकांक्षा का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी के सभी दुश्मनों को साफ़ करके ही यहाँ से जाऊँगी। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और सीधा जाकर एक बार फिर अपने फॉर्मल सोने वाले कपड़े पहने आराम से सिद्धार्थ खुराना के शानदार बेडरूम में टांग फैलाकर सो गई थी, और मन में सोच रही थी, अरे मेरा बदला भी तो कितना ज़्यादा मज़ेदार होगा ना, कितना मज़ा आएगा इस लग्जरी लाइफ को जीते हुए, सिद्धार्थ खुराना और बाकी सबसे बदला लेते हुए। ये सोचते हुए झलक गहरी सांस लेने लगी और एक पल के लिए आज जो कुछ हुआ को सोच के उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को हुक्म दिया कि अब उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहेगा। अगर अब कोई रोएगा तो वो होगा जिन्होंने झलक को रुलाने की कोशिश की है। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सिद्धार्थ कमरे से निकलकर सीधा गेस्ट रूम में चला गया। वहां जाकर उसने लगातार कितने ही सारे सिगरेट जला दिए थे। आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा था। उसका दिल और दिमाग दोनों में अजीब सी जंग चल रही थी। दिमाग कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ जानबूझकर झलक ने किया है, ताकि वो पूरी तरह से उसके खुराना परिवार में आने के रास्ते बंद हो जाएं। वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गांव चली जाए, क्योंकि झलक ने उसे खुद धमकी दी थी, तो वो इसी बात को सच समझ बैठा था। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि झलक सपने में भी दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस वक्त कितनी ही देर तक वो अपने हालातों से लड़ता रहा। फिलहाल वहीं दूसरी ओर रणविजय ने जैसे ये देखा कि इस वक्त सिद्धार्थ तो खुराना गेस्ट रूम में है, तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी सैटिस्फैक्शन वाली मुस्कुराहट थी कि चलो अच्छा है कि ये झलक के करीब नहीं है, वरना रणविजय गुस्से में क्या कर बैठता। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा को अब एक और रास्ता मिल चुका था, झाक की जिंदगी को बर्बाद करने का और पूरी तरीके से सिद्धार्थ की जिंदगी में जाने का, क्योंकि वो बात अच्छी तरह से जानती थी कि सिद्धार्थ खुराना अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब सिद्धार्थ खुराना को ये पता चलेगा कि जिससे उसकी शादी हुई है यानी कि उसकी बीवी झलक, उसका तो खून खानदान का ही पता नहीं और वो उसकी माँ की नाजायज औलाद है, तब क्या होगा। भले ही झलक और आकांक्षा ने एक साथ जन्म लिए थे, लेकिन वैभव ने नैना से सवाल पर किया था कि ये कैसे पता चला कि झलक उनकी बेटी नहीं है। तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि झलक के पैदा होते ही उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था और वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो इसका मतलब साफ था कि झलक आरव मल्होत्रा की ही औलाद थी। कहीं न कहीं अब तो आकांक्षा के चेहरे पर एक छोटी सी राहत थी। हालांकि उसने अपनी माँ का इतना बड़ा सच जानने के बाद उन्हें एक सांत्वना भरा शब्द कहना भी जरूरी नहीं समझा था। वो तो बस अब सिद्धार्थ खुराना की जिंदगी में जाने के लिए अपने अलग ही तरह का प्लान बना रही थी, लेकिन इस बार वो कच्ची गोलियां नहीं खेलना चाहती थी। वो पूरी प्लानिंग के साथ झलक की जिंदगी को अब तबाह करना चाहती थी। फिलहाल जल्दी से काली रात के बाद एक हसीन सुबह हो चुकी थी। झलक अभी भी सोई हुई थी, वहीं सिद्धार्थ गेस्ट रूम से निकलकर सीधा अपने कमरे में जाने लगा था। वो नहीं चाहता था कि दादी जल्दी उठकर उसे बाहर गेस्ट रूम में देख लें और कितने ही सारे सवाल खड़े कर दें। वैसे भी दादी का मूड काफी ज्यादा बदला बदला सा लग रहा था। कल तो वो ठीक से दादी से बात तक नहीं कर पाया था, न ही उनकी बातों का मतलब समझ पाया था, लेकिन अब उसे दादी को सारी सिचुएशन समझानी थी।
इसी सोच के साथ उसने गहरी सांस ली और सीधा अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में जा पाता, रणविजय गर्मा गर्म कॉफी अपने हाथ में लिए सीधा सिद्धार्थ के सामने आ गया और बोला, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, ये लो कॉफी, आई होप गेस्ट रूम में तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। थोड़ा सा जताते हुए ये कहना सिद्धार्थ के तन मन में पूरी तरह से आग लगा गया था। वो रणविजय को इस तरह से देख रहा था मानो उसने उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। फिलहाल सिद्धार्थ का इरादा रणविजय के मुंह लगने का नहीं था। उसने गहली सांस लिया, बिना उसे जवाब दिया अपने कमरे के अंदर जाने लगा था, लेकिन रणविजय तुरंत पीछे से बोल पड़ा, सिद्धार्थ अभी झलक सो रही है और वो सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा खुद से उठाने का दिल नहीं चाहा, तो मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उसके कमरे में जाकर उसे नहीं जगाना चाहिए।